युविका के सामने ईशानी के मरने की सच्चाई आ चुकी थी। वो इस मामले में इशिका को गुनाहगार समझ रही थी और उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, पर अभिमन्यु वहां आ गया था। अभिमन्यु ने युविका को उसी के घर में बंदी बना लिया था। इशिका की देखरेख के लिए अभिमन्यु वहीं पर था और अब उसने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया था। अभिमन्यु इशिका से नाराज था, वो उसकी नाराजगी दूर करने में लगी थी। और इस बीच उन दोनों के दरमियान एक मोमेंट क्रिएट हुआ, वे दोनों उसी में खोए हुए थे। वहीं उनसे अलग युविका अपने कमरे में घर से भागने के तरीके ढूंढ रही थी। युविका ने अपने वार्डरोब से एक साड़ी निकाली, वो उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उसका कैमरा सेकंड फ्लोर पर था, उसे एक लंबी रस्सी की जरूरत थी, इसलिए उसने दो साड़ियों को आपस में बांध दिया था। युविका के कमरे की पिछली खिड़की चौधरी मेंशन के पिछली तरफ खुलती थी, उस तरफ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और इस बात का फायदा युविका उठा रही थी। युविका ने साड़ी से जो रस्सी बनाई थी उसे कसकर एक बड़ी सी टेबल से बांध दिया था। फिर उसने नीचे की तरफ देखकर धीरे से कहा, आई होप मेरा ये प्लान काम कर जाए। पिछले दरवाजे की तरफ कोई नहीं है और मुझे इसी बात का फायदा उठाकर यहां से बाहर निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाना होगा। मेरा टारगेट तुम नहीं थे अभिमन्यु राजवंश, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। युविका अभिमन्यु से कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी। सिक्योरिटी के लिए युविका ने एक बार फिर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई गार्ड नजर नहीं आए। ज्यादातर गार्ड गेट पर और युविका के कमरे के आगे ही लगे हुए थे। युविका ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को तैयार किया। उसने अपनी रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया था। ये उसके लिए आसान नहीं था। लगभग 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद युविका नीचे उतर चुकी थी। नीचे आते ही वो सबसे पहले एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी। आसपास कोई दिखाई ना देने पर युविका ने राहत की सांस ली और धीमे कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी के साथ युविका की सांसें मानो कुछ पल के लिए ठहर गई हों। घबराहट के मारे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। युविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। तभी उसके कानों में इशिका की शांत आवाज पड़ी, तुम्हारा यहां से निकलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पूरे घर को गार्ड्स ने घेर रखा है। अभिमन्यु के बजाय वहां पर इशिका थी। ये देखकर युविका ने कुछ राहत की सांस ली। वो इशिका की तरफ पलटी और गुस्से में बोली, हाँ तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पति इतना कुछ कर रहा है। इशिका शांति से उसकी बातें सुन रही थी, उसे युविका से पूरी हमदर्दी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए युविका ने आगे कहा, तुम उसकी जुड़वा बहन हो ना, तुमने ही मुझे ये बात बताई थी। क्या बहनें ऐसी होती हैं? पता है कई बार क्राइम शोज में जो न्यूज आते हैं कि भाई ने ही अपनी बहन को मार डाला या एक बहन ने दूसरी बहन से बदला लिया, वे तुम जैसे लोगों की न्यूज ही आती हैं। युविका गुस्से में इशिका को कुछ भी सुनाई जा रही थी। इशिका अब तक शांत थी क्योंकि युविका की तकलीफ की हालत में इशिका उसे कुछ भी कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर युविका अब हद पार कर रही थी। इशिका ने युविका की तरफ घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, अपनी लिमिट में रहो मिस चौधरी, मैंने कह दिया मैंने उसे नहीं मारा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर इसके आगे तुमने मुझे कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मेरे साथ कौन सा अच्छा हो रहा है, ऑलरेडी तुम्हारी डियर हस्बैंड ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है, ऊपर से तुम भी मुझे धमकी दे रही हो। ग्रेट, युविका भस्से में बोली। इशिका आगे कुछ कहती उससे पहले युविका वापस अंदर जाने लगी। उसने देखा अभिमन्यु भी इशिका से कुछ की दूरी पर खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु अपने दोनों हाथ बांधकर घूरते हुए उसे देख रहा था। युविका ने कुछ पल रुककर उसकी तरफ देखा और फिर झटके से अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमन्यु इशिका के पास आया और सिर हिलाकर बोला, मैंने तुम्हें इससे बात करने के लिए मना किया था, तुम अच्छे से जानती हो कि इस वक्त इसका मूड कैसा है, मैं नहीं चाहता कि इसके बातों की वजह से तुम हर्ट हो। मैं ठीक हूँ, इशिका ने जवाब दिया। इशिका काफी स्ट्रांग थी, उसने बचपन से सबके ताने सुने थे और बहुत कुछ सहा था। इन सब में एक चीज अच्छी हुई कि इशिका को अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभिमन्यु ने उसकी बात पर यकीन किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया था। दूसरी तरफ अंजलि चौहान के घर पर आदित्य मर्चेंट बिना उसकी मर्जी के रह रहा था। आदित्य के वहां होते हुए अंजलि भी हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी। लकीली उसकी कोई सर्जरी भी नहीं थी जिसे हैंडल करने के लिए उसे अस्पताल जाना पड़े। दोपहर के समय लंच के टाइम अंजलि और आदित्य डाइनिंग टेबल पर थे। आदित्य ने अंजलि से कहा, पिछले दो दिनों से तुमने बाहर एक कदम भी नहीं रखा है, अगर यही चलता रहा तो तुम कभी उसके पास नहीं जा पाओगी, मुझे वो लड़का चाहिए। लड़का आपको चाहिए तो आप ही जाकर मिलिए ना, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, और वॉट अ कोइंसिडेंस, वो खुद मुझसे नहीं मिलना चाहेगा, नफरत करता है वो मुझसे, अंजलि ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। उसे अभिमन्यु की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पढ़ता भी कैसे? उसने और अभिमन्यु ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था। नहीं मिली तो अब मिल लेना। मैंने सुना है 2 दिन बाद वो एक पार्टी थ्रो करने वाला है। चौहान कामली भी उस पार्टी में जरूर शामिल होगी। जाने का रास्ता मैंने बता दिया है, अब उसे मनाना तुम पर डिपेंड करता है, आदित्य ने हल्के सख्त लहजे में कहा। उसके इतने समझाने पर भी अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेपरवाही से बोली, मैं बिजनेस पार्टी अटेंड नहीं करती हूँ। आपको डेस्टिनेशन पता है तो जाकर खुद बात क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है ना अंजलि चौहान, मैं उसकी माँ नहीं हूँ और ना ही मैंने उसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई एक्सपेरिमेंट किया था। जाकर तुम उसे सच्चाई बताओगी कि उसकी जिंदगी पर सिर्फ मर्चेंट फैमिली का हक है, आदित्य इस बार गुस्से में तेज आवाज में बोला। अंजलि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य जानता था कि अंजलि बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी। आदित्य अपनी जगह से उठा और अपने ब्लेजर से उसने रिवॉल्वर निकालकर अंजलि की कनपट्टी पर लगाते हुए कहा, बाकी किसी के जीने मरने से फर्क ना पड़े, लेकिन तुम्हें खुद की जिंदगी से बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जीने और मरने दोनों लायक ही नहीं छोड़ूंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे एक्सपेरिमेंट से एक इंसान के शरीर के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। अंजलि ने खुद अपनी आंखों के सामने आदित्य के हाथों एक आदमी को बहुत बुरी तरह से तड़प कर मरते हुए देखा था। वो एक खराब एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। डर के मारे अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया था। जब भी वो उस लम्हे को सोचती थी तो अंजलि को आज भी डर महसूस होता था। अंजलि के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर आदित्य ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे अब आगे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े। पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी और एक अच्छी स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगी। आखिर तुम्हें एक अच्छी माँ बनने का दिखावा तो करना है। मैं चाहूँ तो ये काम जोर जबरदस्ती से भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो लड़का अपनी मर्जी से हमारे साथ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अंजलि ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वहीं शाम के लगभग 3 बजे इशिका और अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर थे। इशिका खाना खाने की बजाय उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, खाना खाना शुरू करो, मैंने उसे खाना भिजवाया था, उसने खाने से मना कर दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
लेकिन उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अगर उसकी जगह कोई बुरी इंसान होती तो शायद मुझे इतना बुरा फील नहीं होता जितना उसके लिए हो रहा है, इशिका ने अपनी कश्मकश अभिमन्यु को बताई। वो युविका के लिए परेशान हो रही थी। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो जिद्दी भी काफी है, हमारी बात नहीं मानेगी, अभिमन्यु बोला। मुझे बस एक बार कोशिश करने दो, इशिका ने प्लीडिंग वॉइस में कहा, तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि इशिका अकेले में युविका से मिले, क्योंकि युविका के इरादे फिलहाल ठीक नहीं थे। वो इशिका को ईशानी के कातिल समझ रही थी, तो ऐसे में वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। इशिका के प्यार से मनाने पर अभिमन्यु मान गया था। वो जल्दी से उठकर एक प्लेट में खाना सर्व करने लगी। प्लेट लेकर ऊपर जाने के लिए पलटी ही थी कि पीछे से अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, अगर उसने तुम्हें एक खरोच भी पहुंचाई तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, और अगर उसके लिए थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर मेरे मन में है वो खत्म हो जाएगा। अंजाम सोचकर ही उसके कमरे में जाना इशिका, मैंने कहा ना मैं देख लूंगी, इशिका ने उसकी तरफ पलट कर कहा और फिर जल्दी से ऊपर चली गई। युविका के कमरे के आगे अभी भी गार्ड खड़े हुए थे। इशिका ने उन्हें इशारे से साइड में होने को कहा और फिर कमरे के अंदर गई। युविका बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने और ईशानी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे। कमरा खुलने की आहट के साथ युविका ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो खाने की प्लेट के साथ इशिका खड़ी हुई थी। उसे देखकर युविका ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे। इशिका उसके पास चलते हुए आई और सॉफ्ट वॉइस में बोली, तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ खा लो, मुझे भूख नहीं है। और भूख लग भी कैसे सकती है, तुम्हें तो पता भी नहीं है ईशानी मेरे लिए क्या मायने रखती थी, युविका ने भारी आवाज में कहा। पहले जहां युविका इशिका के साथ गुस्से में बात कर रही थी तो इस वक्त वो काफी शांत हो रही थी। उसकी आवाज भी धीमी थी और वो इशिका से बहस भी नहीं कर रही थी। इशिका युविका के पास आकर बैठी और उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर एक बात अच्छे से पता है कि ईशानी बहुत अच्छी इंसान रही होगी। वो अच्छी इंसान थी, फिर भी तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, मारकर कहाँ दफनाया है तुमने उसे, वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी, युविका ने कहा और फिर वो फिर से रोने लग गई थी। इशिका ने गहरी सांस ली और शांत धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे बेवजह गुनहगार समझ रही हो, मैं तो जानती तक नहीं थी कि वो मेरी जुड़वा बहन है, उसने मुझे अपना नाम भी गलत बताया था। तुम जानती हो जब हम आखिरी टाइम शिप पर थे तब उसने मेरी जान बचाई थी, अभिमन्यु के आदमी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने मुझे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया था, तो वहीं ईशानी की लाश पानी में रहने की वजह से सड़ चुकी थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन DNA टेस्ट मेरी माँ से मैच हो गया। सबको यही लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ भी इस बारे में नहीं जानती है कि उनकी कोई और बेटी भी थी, तो मेरी बात का यकीन करो, तुम जानती हो ईशानी को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहा है। इशिका ने युविका को पूरा घटनाक्रम बता दिया था,
जिसे पहली बार युविका ने गौर से सुना था। इशिका की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। युविका का दिमाग भले ही इशिका पर यकीन करने से मना करे, लेकिन दिल ही दिल में लग रहा था कि इशिका बुरी इंसान नहीं है। युविका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी, फिर उसने खुद को सख्त करके कहा, कभी सोचा है रूही का क्या होगा? तरुण ने उसे कभी अपना नाम नहीं दिया। अगर उसके सामने ये सच्चाई आ गई तो वो ईशानी की कंपनी और घर को भी हड़प लेगा। रूही बेघर हो जाएगी। रूही कभी भी बेघर नहीं होगी, और ना ही अनाथ। मैं और अभिमन्यु उसे अडॉप्ट करके बेटी का पूरा प्यार देंगे, और रही बात तरुण की तो उसे तलाक दे दिया जाएगा। तब तक उसके सामने ईशानी के मरने की सच्चाई नहीं आएगी, इशिका ने जवाब दिया। युविका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने सिर हिलाकर कहा, और क्या लगता है वो इंसान इतनी आसानी से ईशानी को तलाक देकर उसे आज़ाद कर देगा? युविका की बात सच थी, इशिका भी सोच में पड़ गई थी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा अभिमन्यु उनकी सारी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी उसके पास बाहर खड़े गार्ड का कॉल आया। उसने कॉल पर कहा, सर एक गाड़ी अंदर आई है जो इसी फैमिली की है, आप प्लीज बाहर आकर देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई इशू क्रिएट हो। अभिमन्यु ने उन्हें वहीं पर रोका और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। जब चौधरी फैमिली एक हफ्ते बाद आने वाली थी, तब अचानक उनके घर का कौन सा मेंबर वहां आ गया था, ये सोचने वाली बात थी। अब तक तो अभिमन्यु ने चौधरी फैमिली को रोकने के भी इंतजाम नहीं किए थे, तो क्या वक्त से पहले चौधरी फैमिली अपने घर पहुंच चुकी थी? आप मेरे प्रोफाइल की बाकी कहानियां पढ़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। आप जानवी शर्मा लिखकर सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी, जिस पर मेरी बाकी और भी स्टोरीज है।